अरुंधति, एक साल मोदी सरकार को हो गया है और इस साल के दौरान कई तरह की आवाज़ें उठीं, खासतौर पर अल्पसंख्यकों को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, और ये एलिगेशंस लगे कि उन पर फिज़िकल हमले भी बढ़े हैं और एक मेंटल तरीके से भी वो इस वक्त बहुत घबराहट महसूस करते हैं। क्या इस आंकलन से आप इत्तेफाक रखती हैं?
देखिए, एक तो मैं पहले बोलूँगी कि जब हम लोग माइनॉरिटीज़ कहते हैं, इस देश में सब लोग एक ना एक किसी न किसी तरीके से अपने आप को माइनॉरिटी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हमला हो रहा है, दलित के ऊपर हमला हो रहा है, आदिवासी लोगों के ऊपर हमला हो रहा है, और ये सब मिलके एक बहुत बड़ा मजॉरिटी बन जाते हैं गरीब, और उनका ज़मीन छीना जा रहा है, उनका रोज़ी रोटी छीना जा रहे हैं, और उनको ये बोला जाता है कि अरे बहुत साल के बाद हमारा हिंदू सरकार आ गए। लेकिन अब दोनों के बीच में एक किस्म के टेंशन है, क्योंकि पहले से ही जो लोग अपने आप को बहुत ही नेशनलिस्ट और हिंदू नेशनलिस्ट कहते आ रहे हैं, वही लोग देश का संपत्ति बेचना चाहते हैं, और अभी बहुत ही तेज़ी से बेच रहे हैं। पहले भी बेच रहे थे मनमोहन सिंह का सरकार, लेकिन अब उसका स्पीड बहुत बढ़ गया। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट जब बदलेंगे और लोगों का कंसेंट भी नहीं लेना पड़ता है, सीधा आप उसको लेके कॉर्पोरेट को दे दो। इस वक्त 100 परिवार के पास उतना संपत्ति है जो हमारे देश के 25% GDP का जितना है, और अगर आप ये पूरे बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को देखो तो सब एक ही जाति के होते हैं और वो एक बहुत छोटा सा माइनॉरिटी के। तो एक्चुअली हमारे देश माइनॉरिटीज़ चला रहे हैं, बट वी जस्ट लाइक टू थिंक द माइनॉरिटीज़ आर मुस्लिम, राइट?
यहाँ आप माइनॉरिटी कह रही हैं उस तबके को जो बहुत धनी है।
हाँ,
आप कह रही हैं वो एक माइनॉरिटी है और जो मेजॉरिटी है वो गरीब है और उस पर उनका एक दबदबा है।
नहीं, मैं ये भी कह रही हूँ कि उसमें भी जाति का एक फिल्टर लगा के आप देखिए तो जाति का बहुत बड़ा इसमें खेल है, और एक तरह से हमारे पहले जैसे फ्यूडलिज्म था जिसमें बड़े बड़े ज़मींदार या तो ठाकुर या तो जो लोग मीडिया में हैं, जो लोग मीडिया ओन करते हैं और जो लोग कॉरपोरेट फैमिलीज़ हैं, उनके पास सब कुछ जा रहा है, अभी लैंड, वाटर, मीडिया, सब कुछ, और एक किस्म के एक अंग्रेज़ी में कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट बिहेवियर, जैसे आप मुसलमान के ऊपर हमला करो या दलित के ऊपर हमला करो और पूरा अटेंशन उसमें चले जाते हैं, जब तक आप पूरा ये कॉरपोरेट लोगों के पास माइंस दे रहे हैं, डैम्स दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, हेल्थ दे रहे हैं।
अर्थव्यवस्था का और अल्पसंख्यकों पर जो हमले हैं, आप कह रही हैं उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है जो शायद आसानी से सतह पर लोगों को दिखाई भी नहीं देता है। अल्पसंख्यकों पर हमलों की तादाद अगर हम आंकड़ों में देखें तो इतनी नहीं बढ़ी है पिछले एक साल में, लेकिन बार बार हम एक फियर के, एक डर के माहौल की बारे में सुनते हैं। क्या आपको लगता है ये डर का माहौल सचमुच है? क्या इतनी ज़्यादा हिंदू ताकतें जिन्हें कहा जाता है वो सचमुच इतनी बड़ी हैं? क्या ये सही है?
बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? जब कोई इलेक्शन कैंपेन हो रहा था, जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन कैंपेन जो एक साल पहले हुआ, तब मुजफ्फरनगर में हुआ, सब बहुत साल पहले 2002 में गुजरात में हुआ, और वो जो नरसंहार है उस एक किस्म का इलेक्शन कैंपेन ही बनता है, और जब ये पार्टी जो ये करते हैं जब वो पावर में आते हैं तो उनके लिए अच्छा नहीं होता कि बार बार उसी लेवल का वायलेंस करो, लेकिन लोगों को दबा के रखो।
हालांकि अभी ये साबित नहीं हुआ कि इसी पार्टी ने 2002 के दंगे कराए या मुजफ्फरनगर के दंगे कराए, पर आपका ऐसा आंकलन है?
ये तो आप कैसे आप कह सकते हैं कि हमें पता नहीं है? जब कोई चीफ मिनिस्टर होता है कोई स्टेट का, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? नहीं, उनका अपना रेटोरिक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लीगली आप कह सकते कि इसने ये कत्ल किया, उसने ये कत्ल किया, पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जब आप चीफ मिनिस्टर होते हैं एक स्टेट का। कभी भी उसका अपॉलॉजी भी नहीं हुआ, किसी किसी तरह का अफसोस नहीं हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल में यही है कि अभी एक मजॉरिटेरियन सोसाइटी को तैयार किया जा रहा है। सिर्फ हम लोग दंगा और मारपीट को नहीं देखते, यूनिवर्सिटीज़ में क्या हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी का करिकुलम में क्या हो रहा है, कौन सा किताबें बैन हो रही है, टीवी पे क्या चल रहा है, कैसा माहौल बन रहा है, ये आप अगर यहाँ रहते हैं तो कोई नहीं कह सकते कि दबाव नहीं बढ़ रही है। बहुत डरावनी एक माहौल है।
अभी मुंबई से खबरें आईं कि एक शख्स थे, उनको एक ईमेल आया कि उनको नौकरी नहीं दी जाएगी क्योंकि वो मुसलमान हैं। उसके दो दिन बाद एक महिला ने कहा उनको रहने की जगह नहीं मिली, हटना पड़ा एक अपार्टमेंट से क्योंकि वो मुसलमान थी। पर क्या ये जो एक माहौल है, क्या ये हमेशा से ही या एक लंबे समय से भारत में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी में कुछ अलगाव या घेटोज में रहना, दिल्ली में भी क्या ये रहा नहीं है? क्या बीजेपी सरकार आने के बाद इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है?
हमारे जो कल्पना में लोगों को ऐसे अलग अलग करके रखना पुरानी चीज़ है। जैसे अभी जिनको घर नहीं मिल रहे हैं या जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है, ऐसे तो हमारे समाज में दलित कैसे रहते थे गांव के बाहर? कोई दलित आज भी जाएगा बॉम्बे में घर ढूंढने के लिए, शायद ऐसे ही होंगे उनके साथ। लेकिन जब मिडिल क्लास के साथ होता है तो थोड़ा अलग हो जाता है। और ये नहीं है कि अभी से शुरू है, पार्टीशन क्यों हुआ था इसीलिए, क्योंकि बहुत बढ़ गया था। लेकिन यहाँ पे पूरा कल्टीवेट किया जा रहा है, बहुत बहुत सिस्टमैटिकली कल्टीवेट किया जा रहा है एक दूसरी किस्म का कल्पना समाज के बारे में, सिस्टमैटिकली टेक्स्ट बुक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, मीडिया में कोशिश से कल्टीवेट किया जा रहा है। और सिक्का की दूसरी तरफ एक कॉर्पोरेट एटमॉस्फेयर।
एक और हमने एस्पेक्ट देखा है कि एनजीओस जो हैं, जो मानवाधिकार संगठन हैं, उनके काम को लेकर भी सरकार की तरफ से आपत्तियां जाहिर की गई हैं, कभी उनके फंडिंग को लेकर, या तीस्ता सीतलवाड़ जो गुजरात में काम कर रही थी उनके भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ को सामने लाया गया। तो क्या आपको लगता है आने वाले समय में ऐसी आवाज़ें या ऐसे संगठनों को भारत में काम करने में दिक्कत होगी, या ये कुछ एक ही उदाहरण है और इनको नॉर्म ना माना जाए?
नहीं, बजरंग दल और VHP भी NGOs ही है ना, उनको भी बाहर से पैसे आते हैं। कुछ NGOs को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और कुछ जो सवाल उठाते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ा जाएगा। और मेरे ख्याल में सबसे बड़ा खतरा ये है कि जब ये सरकार महसूस करते हैं कि उनका सपोर्ट कम हो रहा है या लोग बहुत ही डिसिल्यूजन हो रहे हैं उनके साथ, वो जंग छेड़ेंगे पाकिस्तान के साथ और इसी से निकलने की कोशिश करेंगे। और सब दुनिया, पूरी दुनिया को मालूम है कि दोनों तरफ न्यूक्लियर आर्म्स है। बहुत खतरा है इसमें, बहुत ज़्यादा।
अभी कई लेख लिखे गए मोदी सरकार के एक साल पूरे होने पर, एक प्रताप भानु मेहता ने भी लिखा और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, करोजन। उन्होंने कहा ऊपर ऊपर सब ठीक लगता है पर नीचे एक करोजन, करोजन यानी कि चीज़ों के उखड़ने या कम होने की, उनका प्रभाव कम होने की बात। क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं आगे की ओर, ख़ास तौर पर जब देखती हैं इसका क्या इम्पैक्ट देखती हैं इस करोजन का?
करोजन बहुत अलग अलग किस्म का हो रहा है। एक तो पूरा ऑल द राइट्स, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों को करोड किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार के अंदर भी मेरे ख्याल में एक बहुत अजीब किस्म का करोजन हो रहा है, क्योंकि मोदी अब पूरा पावर अपने हाथ में ले रहे हैं। एक तरह से एक आई थिंक ह्यूमिलिएशन, एक बेइज्जती हो रहा है बाकी लीडरशिप को ख़त्म किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी यही हो रहा है, एक डर, एक पूरा फ्रोजन, द मशीनरी इज़ फ्रोजन। इन सब का जो नतीजा है थोड़ी देर बाद आएगी।
तो क्या आप जैसे जो लोग हैं जो बहुत खुलकर बेबाकी से लिखते हैं, इस सारे माहौल का आप पर कोई असर पड़ता है?
इतनी बेबाकी से तो नहीं लिखती हूँ मैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि जो अटैक होते हम पर, ऐसा नहीं है कि सीधा सरकार अटैक करेंगे, उनके गुंडे होते हैं, फॉल्स केसेस फाइल किया जाते हैं, बहुत हज़ारों लोग जेल में हैं और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो फिर दिखाते ना कि देखो ये खुलेआम बोल रही है, कुछ नहीं हुआ इसको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये, किसको छोड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, किसको क्या करेंगे, कौन करेंगे, सरकार करेंगे, कोर्ट करेंगे, पुलिस करेंगे, सड़क पे गुंडे करेंगे, लेकिन माहौल तो बहुत ही सीरियस है।
तो आगे देखते हुए अभी इस सरकार के 4 और साल बाकी हैं, क्या आपको लगता है कि, क्योंकि आपने करोजन की बात पार्टी के अंदर भी की और आपने सरकारी स्कीमों में भी की, आपने हिंदू मुस्लिम रिश्तों में भी की, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे बदलाव में या सांप्रदायिकता में भी की, तो आने वाले समय में कौन सी ताकतें आपको लगता है हावी होंगी? क्या बहुत बड़ा बदलाव आएगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा?
हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा, हम तो नहीं बनाने देंगे, लेकिन कोई नहीं बोल सकते हैं कि क्या होगा, क्योंकि इतना आजकल जो इतना स्पीड से बनते हैं बातें, बिगड़ते हैं बातें, मीडिया सोशल मीडिया को लेके, एक साल पहले सब सोच रहे थे कि अरे ये सरकार तो 10 साल होगा, अब तो लोग सोच रहे हैं कि ये पूरा टर्म कर पाएंगे कि नहीं। एक बार उसने अपना वो सूट जिसमें अपना नाम लिखा हुआ था उससे कितना बिगड़ गया, मतलब खोखला हो गया ना, जो मैं चाय वाला हूँ ये वो सब कह के आए थे, फिर 10 लाख रुपया का सूट। मैं नहीं कह सकती हूँ कि क्या होगा, क्योंकि बहुत स्पीड से बदलते ही लोग, अभी जैसे सबको मालूम है कि पेट्रोल का प्राइस दबा हुआ है, इसीलिए जो कुछ चल रहा है चल रहा है, जैसे वो पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा क्या मालूम क्या होगा।
शुक्रिया बीबीसी हिंदी से बात करने के लिए अरुंधति रॉय।